एंड फेसबुक पे लाइव हम आपसे इजाजत चाहते हैं. रेडियो पे हम आपके साथ 9 बजे तक रहेंगे. आप लोगों की कॉल्स लेंगे हम एंड विल बी विद यू जस्ट लाइक एवरीडे एल्स विल बी विद यू. अल्लाह हाफिज. ऑन टीवी एंड फेसबुक रेडियो पे हम आपके साथ हैं.
जिंदगी की सबसे अहम जरूरत पानी.
पाकिस्तान के उन इलाकों में जहां पानी की अशद जरूरत है, जुनेद जमशेद मरहूम ने शुरू किया ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन. इसका मकसद सोलर वाटर प्लांट के जरिए पीने के साफ पानी की फराहमी. आइए आप इस कार्यक्रम में शामिल हो, अपना नाम अमर कर दीजिए. 19 जुलाई जुमे के दिन 7:70 AM पर डोनेट जेनरसली फॉर सोलर वाटर प्लांट.
ज्वाइन 7:70 AM 4 to 5 PM फ्राइडे जुलाई 19th. 416-620-1778
416-620-1778. आप सुन रहे हैं WTOR 770 साज़ावास ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7. हमारे रेडियो और टीवी के सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या डाउनलोड कीजिए फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप. eawaz टीवी आपका अपना चैनल है. आप eawaz टीवी को तमाम IPTV बॉक्सेस पर फ्री देख सकते हैं. लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ई आवाज. फीडबैक और एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉल कीजिए 6478986245 6478986245.
सेल 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 विनायक फर्नीचर मिसिसागा लोकेशन कहाँ 2915 अर्जेंटिया रोड इन मिसिसागा वेस्टर्न चर्च अर्जेंटिया मेजर इंटरसेक्शन. अपनी कम्युनिटी का 15 साल पुराना स्टोर जहाँ पर बेडरूम सेट मिलता है 499, कॉफी टेबल 199, मैट्रेस $99 ओनली. फर्नीचर से रिलेटेड कोई जरूरत हो पहुँचिए 2915 अर्जेंटिया रोड इन मिसिसागा. फोन नंबर 905-858-2667.
नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा हलाल फूड फेस्टिवल आपके अपने शहर टोरंटो में जुलाई 20 और 21 द इंटरनेशनल सेंटर मिसिसागा एंट्रेंस 5. For more information, call 647-286-5727, 647-286-5727.
The world of endless options, FPL brings for the first time, the finest from Pakistan. Pakistan ke behtareen designers exhibiting at Hilton Garden Inn, Mississauga, Eglinton and Matheson, Toronto. On the 13th of July from 11 AM till 7 PM. You don't want to miss this one from Fashion Pakistan Lounge.
बिजनेस रन करना मुश्किल है, सो प्रिंटर की प्रॉब्लम से इसे और मुश्किल क्यों बनाएं? फास्टर और स्मार्टर प्रिंट करें अपने नए HP ऑफिस जेट प्रो प्रिंटर के साथ और सब्सक्राइब करें HP इंस्टेंट इंक, कनाडाज ओनली इंक सब्सक्रिप्शन सर्विस जो इंक आपके घर पहुंचाए खत्म होने से पहले. आज ही खरीदें न्यू HP ऑफिस जेट प्रो प्रिंटर और सब्सक्राइब करें HP इंस्टेंट इंक स्टार्टिंग एट $399 a month. विजिट HP.ca या अपने नजदीकी HP रिटेलर.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने. उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे.
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है. अपने हक जानने ले या सलाह लेण ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000.
जब भूख लगे और नहीं है वक्त, बस गरम करे और कर दे सब ताजा मील्स एंड कबाब, फ्रेश और बहुत मजेदार.
मसाला भिंडी, बघारे बैगन, तड़का दाल, मिर्चों का सालन, राजमा, लाहौरी छोले, शामी और रेशमी कबाब, पूरी भाजी, दाल पूरी, आलू भुजिया के साथ
फ्रेश और बहुत मजेदार.
ताजा मील्स एंड कबाब, फ्रेश और बहुत मजेदार.
1, 2, 3, ready to eat.
ताजा, eat it your way.
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872.
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ.
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872.
और हर मंडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल.
हैदराबादियों के बनाए हुए असली हैदराबादी खाने एट बेग्स ग्रिल,
जिसके खाने
हुए खालिस मसालों से बने लजीज हैदराबादी खाने एट बेक्स ग्रिल, लुखमी चिकन 65 और हैदराबादी बिरयानी का तो हेड ऑफिस। Kennedy Road in Brampton, 905-230-3243.
खुशखबरी, ब्रैम्पटन वेस्ट, मिसिसागा और मिल्टन के लोगों के लिए डेंटिस्ट डॉक्टर नाजिया रहमान की सेकेंड लोकेशन अब खुल चुकी है। फैमिली कॉस्मेटिक, ब्रेसेस, इम्प्लांट्स, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग, क्राउन ब्रिजेस एंड लेजर टीथ व्हाइटनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर, मॉर्निंग, इवनिंग एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स, डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड इजी पेमेंट ऑप्शंस, ओडीएसपी एंड हेल्दी स्माइल एक्सेप्टेड एट डेंटिस्ट्री ऑफ मिसिसागा। न्यू पेशेंट्स वेलकम। फॉर फ्री कंसल्टेशन प्लीज कॉल डेंटिस्ट डॉक्टर नाजिया रहमान, 905-872-1100, 905-872-1100.
जी साहब, प्रोग्राम में एक तरफ से खुश आमदीद कहना चाहते हैं। हमारे फर मुजफ्फर आपके साथ हैं। दो आपके साथ न्यूज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक न्यूज़ जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, दैट इज़ अबाउट जो डोनाल्ड ट्रंप के या अमेरिका के जो वो हैं बिग कैबिनेट टर्नओवर की ग्रोइंग, अकोस्टा जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और माजिद भाई क्या कहते हैं?
मैं ये कहता हूँ आरफा जी कि हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पे अफसोस करते हैं, रोते हैं, डिसहार्टेड होते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, द मोस्ट पावरफुल पर्सन, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इनके इतने स्कैंडल्स हैं और यहाँ के इनकी गवर्नमेंट के इतने स्कैंडल्स हैं, एवरी डे यू फाइंड सम न्यू स्कैंडल, बट He's the most popular in America.
ये साहब अकोस्टा जो हैं इन्होंने रिज़ाइन किया है। अकोस्टा आपको पता ही है कि अभी वो जो रिसेंटली एक सेक्सुअल स्कैंडल हुआ है कि इस शख्स ने 66 इयर्स का एज बिलियनर अमेरिका का, वो 14 साल की लड़कियों को ट्रैप करने के जेफरी एप्स्टीन के मामले में, और उसी जेफरी एप्स्टीन के मामले में ही इसको अकोस्टा को रिज़ाइन करना पड़ा है। लेबर सेक्रेटरी अलेक्जेंडर अकोस्टा आज इन्होंने रिजाइन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी बड़ी तारीफ की है, उसने कहा ही इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन। और अकोस्टा यकीन उन्होंने कहा है कि मैंने उसको नहीं कहा कि वो छोड़े, मगर उसने रिजाइन कर दिया। और कोट एंड कोट्स में, ट्रंप विद अकोस्टा एट हिज साइड सेड फ्राइडे ही डिड नॉट आस्क हिज सेक्रेटरी टू लीव एंड आई हेट टू सी दिस हैपन। उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। द प्रेसिडेंट हु पब्लिकली faults the news media almost daily, यानी मगर यहाँ पे मैं कंपेयर करती हूँ कि न्यूज़ मीडिया को फॉल्टी तो वो करार देते हैं मगर उन्होंने बंद तो नहीं ना किया। अकोस्टा ने उन्होंने कहा कि इन्फॉर्म्ड मी दिस मॉर्निंग दैट ही फेल्ट ही यानी रिज़ाइन कर दे, तो बहरहाल मैं नहीं चाहता था कि वो रिज़ाइन करें। ये यूएस का अटॉर्नी है मियामी में, और ये 2008 की बात है, नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट एब्सटेन का इसने देखा था और क्या टाइज थी क्या नहीं थी। जी माजिद भाई,
टाइज वगैरह से बातें पता लगी इनकी, मगर ये ज़रूर है कि ही इज़ नॉट द ओनली वन एंड ही इज़ नॉट द फर्स्ट एंड ही इज़ नॉट द लास्ट। अभी ये जब तक इलेक्शन होंगे इनके नवंबर में, उस वक्त तक यू विल सी ग्रोइंग नंबर्स ऑफ ये जो ऑफ हाई ऑफिशियल्स।
एंड डोनाल्ड ट्रंप सेज ही विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन।
Oh, definitely he's going to say that. What else can he say? He's going to say that. Be the politician.
Sab burai ki koi intaha nahi hai. Former elementary teacher charged. Elementary, 8th sab tak ke school hote hain. Elementary teacher charged with the sexual assault of grade
5 स्टूडेंट पांचवी जमात के। ये दरम पुलिस ने अरेस्ट किया फॉर्मर एलिमेंट्री स्कूल टीचर को और सेक्सुअल असॉल्ट ग्रेड 5 के। ये तकरीबन 22 साल पहले का वाक्य। अब ये तफसील कैसे बदली आप समझिएगा, 22 साल पहले जो बच्चा 5 साल का था आज वो 27 साल का है। इस टीचर को अरेस्ट किया गया फ्राइडे को और ये कहते हैं 1996-1997 का वाक्य है। ओशवा के स्कूल में ये हुआ था और स्कूल जो इस सीडर स्ट्रीट के ऊपर ये स्कूल वाक्य है। और इस टीचर की एज 74 है। Isn't it sad, माजी पे? 74 मौत के करीब है, रिटायरमेंट हो गई है। डगलस ब्रुक्स इसका नाम है। 74 ऑफ बॉमन वेल इज चार्ज्ड विद अ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल इंटरफेरेंस एंड इनविटेशन टू द सेक्सुअल टचिंग। पुलिस ने ये जो लड़का था कहता है उसकी उम्र उस वक्त 5 साल थी, आज इस लड़के की उम्र 27 साल है। 1996-1997 में ये वाकया हुआ था और इस बच्चे ने अब एज 27 पे आके इस का इजहार किया। पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। 74 years
आरफा जी, अभी 27 साल पहले वो भी इन 50s में होंगे,
50s में थे ना। ही वाज इन 56 50 50 50s में थे। मगर नाउ आज मजबे मेरा कहने का मकसद है एट द एज 74 ही इज बीन अरेस्टेड।
ही इज बीन अरेस्टेड यस।
एंड अगर ये चार्जेस साबित हो जाते हैं तो ही विल बी बिहाइंड द बार्स। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, आपके चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है। सो व्हाट इज योर फेस
एग्जैक्टली?
ठीक साहब, हज का दौरान शुरू होने वाला है। हज के दौरान सऊदी अरेबिया का एक इंतबाह है कि सऊदी अरेबिया में सऊदी काबीना ने ऐलान किया है कि कोई भी शख्स हज के दौरान अगर नारे लगाएगा तो मुकर्रा कवानीन और जवाबित के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब आज़ादी कहाँ आ गई, कहाँ की गई? जद्दा में सऊदी फरमानरबा शाह सुलेमान की जद्दा में रिहाइश का इजलास मुनक़िद हुआ, फैसले किए गए, इंतजाम का जायज़ा लिया गया। काबीना ने अलर्ट किया है कि कोई सियासी या फिरका वाराना नारेबाजी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आई एग्री विद दैट 110%।
यस, आप हज करने जा रहे हैं, अगर आपको इतना इख्तलाफ है तो ना जाएं।
आप वो हज करने जा रहे हैं, आप
सियासत करने जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं?
जिसको दे एग्जैक्टली।
काबीना के मुताबिक बाज़ ताकतें हज सीजन के दौरान नाजायज फायदा उठाने के लिए सियासी नारेबाजी और फिरका वाराना हंगामा करवाने की ताक में लगी रहती हैं। सऊदी मुमलकत को तशख्स बिगड़ने और इसके मुनफी प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलेगा और उन्होंने तमाम इदारों को हिदायत की है कि हज पे आने वाले आजमीन को ज्यादा से ज्यादा आसानियां फराहम की जाएं, अमन अमान को यकीनी बनाया जाए, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जमीनी सरहदी चौकियों पर कड़ी निगरानी की जाए। मगर अगर कोई शख्स जरा सी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत किया जाए करे तो उसको अरेस्ट करे, और करना भी चाहिए,
करना चाहिए। अरफा जी, कपला कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे हमने वादा किया था कि हम दोबारा लेंगे, आप लोग लाइन खोलेंगे
योर लाइन। और क्विकली मैं दो एक स्पॉन्सर्स का पैक आप दो। स्वागत बैंक्वेट हॉल 6991 मिल क्रीक ड्राइव पर स्वागत बैंक्वेट हॉल इवेंट्स, पर्सनल बिजनेस कॉरपोरेट वेडिंग सर्विसेज लाउंज है, प्रमोशनल इवेंट्स है, स्वागत बैंक्वेट हॉल 6991। इजाज शाह साहब जो पीआईए के एक्स कंट्री मैनेजर हैं वो अब इसको रन कर रहे हैं। 9058219688 8219688 8219688 उनका नंबर है। अगर आप अपने घर में या ऑफिस में इंटीरियर या एक्सटीरियर को पेंट करवा के घर की शानो शौकत ही बदलना चाहते हैं, हाउस पेंटिंग, वॉलपेपर का रिमूवल है, स्टको को रिमूव करना चाहते हैं, सीलिंग को रिपेयर करना चाहते हैं, ड्राई वॉल को रिपेयर करना चाहते हैं, तो साहब सीनियर्स के लिए डिस्काउंट भी है ग्रेटर टोरंटो एरिया और सराउंडिंग एरिया में। आप सलीम सिद्दीकी से राब्ता कीजिएगा, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट सलीम सिद्दीकी और गारंटीड बेस्ट प्राइसेस बेस्ट सर्विस 6472711974271974 सलीम सिद्दीकी का नंबर
जी। नेक्स्ट कॉल, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम आयल भाई, क्या हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बात कर रहे हैं सर?
तारिक बात कर रहा हूँ भाजी, क्या हाल है?
अल्लाह का शुक्र है चंदा।
अच्छा, बात ये है कि ना पहले तो मैं अपना तारफ करा दूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या कोई गलतफहमी है ना, बहुत सारी जगहों में मैं गया, वो कहने लगे जी आप किसके एजेंट हैं, आप एमकेएम के एजेंट हैं, आप रा के एजेंट हैं, आप फलाने के एजेंट हैं, फलाने के एजेंट हैं, आप मेशा नवासी के हक में बोलते रहे हैं।
मैंने कहा जी मेरी पार्टी है जिसके साथ मैं हूँ।
अच्छा अच्छा, अभी बात सुन, मजे की बात, میرا سیالکوٹ ضلع چونڈے کا قریب میرا تعلق ہے. سارے سات سے آٹھ فیملی ممبر جو ہے نا ہمارے آرمی آفیسر سے لے کے یعنی لوور رینک سے ہائی رینک تک ہمارے آرمی میں, میرے کزن بنوئی, میرے انکل سارے یہ انہوں نے سرو کیا ہے. 71-65 کی وار بھی لڑی ہے انہوں نے, اور ہم پراؤڈ ٹو بی سپورٹ صرف اور صرف کہ میں احمدی ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں.
That's your personal affair. میرا آپ کو پتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی مجھے شیعہ کہتا ہے, کوئی مجھے احمدی کہتا ہے, کوئی الحمدللہ, مطلب یہ ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے. میں احمدیوں کی قدر کرتی ہوں. احمدیوں نے ایک زمانے میں یہاں ریڈیو پروگرام بھی کیا. میں شیعوں کی بھی قدر کرتی ہوں, انہوں نے بھی پروگرام کیا. میں سکھوں کی بھی قدر کرتی ہوں, سکھوں نے بھی پروگرام کیا. یعنی آئی رسپیکٹ ایوری بڈی, ایوری ہیومینٹی. کتنا یہ کینیڈا میں آ کے سب سیکھنے کے باوجود کہ اگر میرا ایک دوسرے انسان کے لیے احترام نہیں تو کیا فائدہ. مگر یہ چند لوگ ہیں جو یعنی ہر چیز کو بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. حالانکہ میں احمدی نہیں ہوں مگر میں قدر ضرور کرتی ہوں احمدیوں کی.
اچھا, جو سب سے عام بات میں آپ کو بتانے لگا, میرے جتنے بھی دوست ہیں 90% بہت سارے احمدی, اور بہت سارے دوسرے بھی دوست جو احمدی نہیں ہیں وہ تقریباً پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی نظریاتی جو عمران صاحب بات کہتے ہیں میں بھی ان کی تائید کرتا ہوں, مگر جو جیسا ایکٹ کر رہے ہیں نا ایسا بس میں خلاف ہوں. مجھے یعنی کہ میں پاکستان کے جو جناح صاحب اور ہمارے فرسٹ جو تھے نا فارن منسٹر زرگر اللہ خان وہ احمدی تھے. ٹھیک ہے, بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ وہ سرفراز اللہ خان صاحب کو پاکستان میں رہے نہیں. اگر وہ رہتے جناح صاحب کے بعد تو یہ حالات یکسر ہوتے, یہاں سے مختلف ہوتے, ایسے حالات نہ ہوتے. اچھا اچھا, میں ان کے سکول آف تھاٹ سے ہوں جناح صاحب کے. جیسا انہوں نے خواب ہمیں دیا کہ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان مشکل میں ہو تو اس کی حق میں بولے, حفاظت کرے. ٹھیک ہے, میرا ایک نئے کے سیاسی طور پہ جو میرا نالج ہے میں وہ سپورٹ کرتا رہا ہوں, اور میں جو سمجھدار رہا کہ جناب جو جس طرح کی سیاست کھیلی جا رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے. اب میں نے کافی دنوں سے نا آنا بند کر دیا تھا, میرے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی تھی ادھر نا.
اللہ خیر.
ٹھیک ہے, اچھا تو بات یہ ہے کہ میڈیا پہ پابندی لگا رہے ہیں عمران صاحب, یہ اچھا نہیں کر رہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, اس کی تو میں مخالفت کرتا ہوں.
صحیح.
ٹھیک ہے, باقی یہ کہ سیاست کرپشن ہے, یہ کرپشن جو پاکستان کے وہاں مجھے سارے آپ کو پتا ہے, یہ جو جب نیا نیا پاکستان آزاد ہوا قائد اعظم کے بعد, لیاقت علی کے بعد نا, ٹھیک ہے, مرو پاکستان کے حالات بدلتے آہستہ آہستہ, پھر یہ ایک ٹریڈیشنل کرپشن بن گئی.
ٹھیک
ہے, یہ اس میں آپ کسی ایک کو بلیم نہیں دے سکتے. یعنی یا اب سیاست اس پہ کھیلیں گے ہو جی یہ کرپشن, ساری پارٹیوں میں اب الیکٹیبل بیٹھے ہیں ہمارے پی ٹی آئی میں بھی. ٹھیک ہے,
صحیح,
ہم جی میں ان کے ساتھ اچھا کوئی پاکستان کے لیے اچھا کام کریں ہمیشہ ان کے حق میں بولوں. ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا نکرے لانا گٹھے لانا میاں صاحب کو, یہ تھوڑا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو میں اس کے حق میں بولتا رہا تھا. ٹھیک ہے,
صحیح,
پاکستان کا 50 سالہ تقریب ہوئی گولڈن جوبلی, ادھر میں نے کرکٹ ٹورنامنٹ کروایا پورے, جتنے بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ تھے پرانے مجھے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ کچھ لوگوں نے نعرے لگا دیے کہ پاکستان تو ٹوٹنے والا ہے, پاکستان کو آپ ٹورنامنٹ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں بڑے شوق خوشی سے, یہ تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. 2010 میں 12 میں 14 میں ہم سنتے آئے, میں نے کہا بھائی یہ آپ کا خواب ہوگا, آئی لو اٹ. تو میں نے ہمیشہ سپورٹ کی, تو پاکستان زندہ باد, کینیڈا زندہ باد, آئینی پاکستان, ڈیموکریسی, اور اسی کو چلتے رہنا چاہیے. ایک دوسرے کو سیاسی انتقام لینا بند کر دے تو ٹھیک ہے, جو بھی ہوگی غلطیاں سب سے اس کو آگے مطلب کوئی مثبت حل سوچے.
طارق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.
طارق بہت خوبصورت طور پہ آپ نے بات کی, میں صرف یہی کہتی ہوں کہ کینیڈا میں آ کے ہم اس سسٹم کی تعریف کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, بٹ دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ از کہ جب میری ذات کا معاملہ آتا ہے تو میں ریسسٹ بھی ہو جاتی ہوں, اور وہاں پر میں ریلیجنز کو, سیکٹس کو لے آتی ہوں. کوئی بھی سیکٹ کسی انسان کا ذاتی معاملہ ہے. اگر میں نے اس ملک میں یہ ابھی ہم نے ابھی 2 منٹ پہلے یہ بات ہوئی ہے کہ سعودی عربیہ نے اگر آج آپ پابندی لگائی ہے کہ سعودی عربیہ میں جا کے جو لوگ مذہبی اور فرقہ وارانہ نعرے بازی کرنے گئے ہیں وہ करने में हज जा रही हूँ, अपनी नबेड़ के मैंने वापस आना है, टू हैक विद रिलीजन्स एंड टू हैक विद एनीबडी। मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिरी, और मैं अपनी बख्शवाने के लिए जा रही हूँ, बजाय इसके कि मैं वहाँ दूसरे की कब्र में तो मैंने पढ़ना कोई नहीं। तो माजिद भाई ने कहा कि सऊदी अरबिया बिल्कुल जी, मैं जिस मकसद के लिए जा रही हूँ मैं अपना मकसद करके घर आ जाऊँ, यही बहुत बड़ी बात होगी। तो हम अपने ज़ाती मकासद के लिए किसी भी दूसरे के साथ, जैसे अभी मैंने जब सऊदी अरब का जिक्र किया तो मैंने बड़ी हैरत से ये बात की थी, अगेन तारिक हर इंसान की हमदर्दियाँ हैं, जैसे आप नवाज शरीफ साहब के साथ करते हो, जरदारी साहब की हमदर्दी करते हैं। तो मैंने कहा था कि 1 जून रमज़ान का आखिरी अशरा, और वो जज साहब फरमा रहे हैं कि जी वो नवाज शरीफ साहब के बेटे ने और नासिर भट्ट ने जाके मुलाकात उनकी कराई। यानी आप उस खूबसूरत मुकाम पर बैठे हुए पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो अगर मुझे ज़ाती मफाद के लिए ना तो मैं पॉलिटिकली डिवाइड कर सकती हूँ, दिस इज़ अ ओथ ऑफ दिस कंट्री दैट आई विल रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स ऑल द कल्चर्स एंड आई बिलीव एनीबडी एंड एवरीबडी हु डज डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी होल्ड अकाउंटेबल फॉर। डॉक्टर अदनान हमारे पास आ गए, क्रिकेट की तरफ लेके चलते हैं
जरूर।
सेकेंड लास्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम
जी। आरफा जी, मुझे ना एक रिक्वेस्ट करनी थी
जी। कीजिए।
शगुफ्ता बात कर रही हूँ मैं।
मुझे पता जानू, आप बात कीजिए।
मेरे हस्बैंड की ना बहुत तबीयत खराब है, उनको स्ट्रोक हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है पिछले एक महीने से, तो प्लीज इस्तेमाई दुआ करवा दीजिए।
अल्लाह सुब्हानहु
हॉस्पिटल में है
अभी, वो रिहैब में चले गए, टोरंटो रिहैब सेंटर, अगर आप विजिट करना चाहें तो कर लीजिएगा।
मैं डेफिनेटली करूंगी, मुझे मेरी जान में शगुफ्ता में। आज भी नंबर नोट करें, ये जो बीमार की और ख़ास तौर पे किसी की लिए जब आप विज़िट कर लेते हैं ना, तो मुझे नहीं पता कि मेरा कल क्या है, और हो सकता है कि मैं सिर्फ वो बीज बोना चाहती हूँ जिस पे अल्लाह के वादे के मुताबिक एक दाने में से एक फली जो निकले उसमें 1000 दाने हों। तो आपकी बहन और शगुफ्ता, मैं बल्कि मिस कर रही थी आपको। अल्लाह ताला आपके शोहर को ज़िंदगी, सेहत, तंदरुस्ती, आमीन आमीन तंदरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, और आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रखे, आमीन सुम आमीन। अपने तमाम भाई बहनों से इल्तमास है, और वो लोग जो मेरे पे कभी हंस रहे हों इस वक्त, आप यकीन कीजिएगा खुदा पाक की कसम, मैंने आज तक की उम्र सिर्फ दुआओं के सर पे गुजारी। एक नॉर्मल की जिंदगी थी, कोई सिफारिश नहीं थी। वो आयतल कुर्सी में एक आयत है ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वलील करीम ता खुसूसना तुम वला नुम लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहू, कौन है जो मेरी सिफारिश करेगा उसके पास, इल्ला बेज नहीं। यानी अल्लाह की सिफारिश मुझे आज तक चलाए फिर रही है, अल्लाह ताला का ही करम है जो चलाए फिर रहा है। और मैं अपने तमाम भाई बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारी बहुत प्यारी बहन शगुफ्ता, अल्लाह आपको सदा सुहागन रखे, आपके शोहर को ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। शगुफ्ता मुझे नंबर नोट कर लीजिए।
पूरा हाफ क्वेश्चन फ्रीज हो चुका है।
अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह खैर करे। ये शगुफ्ता, बस आप अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। और मैं आपको इतना बताऊँ, मैं आज जिस स्टेज के ऊपर हूँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ मुजफ्फर आप कहीं और हो जाते, मगर मेरी नज़रों के सामने रहते तो कितना अच्छा।
शगुफ्ता बहन, आपने उसका सूरह रहमान का किया?
उनको
रहमान भी वो लिंक वाला जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत है, ये करी अब्दुल बासित वाली।
जी जी, अब्दुल बासित साहब
के अब्दुल ये रहमान अर रहीम की साइट पे जाएं तो मैंने तो वहाँ से डाउनलोड करके रखी हुई है।
असल में एक महीने पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत जबरदस्त, गाड़ी में पूरी गाड़ी खत्म हो गई थी, मुझे भी काफी यह नहीं कहना चाहिए वो हुआ, लेकिन उनका ये हुआ कि उनको ना कुछ इस तरीके से वो जो एयर بلون جو ہے نا وہ جو ہو جاتے ہیں نا ایئر بیگس
رائٹ
ہو جاتے ہیں, تو وہ میرے تو سینے پہ لگے تھے, ان کے نا دماغ پہ لگے جا کے, تو دو سیکنڈ انہیں سیویئر قسم کا اسٹروک آ گیا تھا. تو بس
ان شاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحتیابی دے گا ان کو, اور آپ سورہ رحمان ضرور پہ اس پہ یقین کے ساتھ سنواتی رہیں. بہت شکریہ آپ کا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لاسٹ کال دیں گے ہم یہ آج کی لاسٹ کال. جی ہلو, السلام علیکم.
ہاں جی السلام.
جی سر,
سب سے پہلے تو محمد والے محمد اسد کا اللہ پنچن پاک کے صدقے یہ اس بینک اور تندرستی دے, سب دعا
آمین سب آمین.
باقی آرفا جی, آرفا بین, یہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے نا, وہ بھلے نماز پڑھ کے آئے, وہ بھلے روزے رکھے, وہ بھلے حج کر کے آئے, عمرے کر کے آئے, اگر تو وہ انسان اچھا بن جائے تو بڑی اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہوگی, اگر نہ بنے تو کسی حج کا کسی کوئی نہیں اس کو فائدہ نہیں ہے. باقی پاکستان بنانے میں ہندو سکھ احمدی مسلمان جتنے بھی ہیں, شیعہ سنی ہو, ان سب کا حق ہے, تو یہ سب پیار کرتے ہیں پاکستان سے. یہ اصل میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس پاور ہے وہ میڈیا جو ہوتا ہے, اگر کوئی سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, اس کی سچ کی اگر آواز جاتی ہے دنیا کو سنی جاتی ہے, اگر وہ جھوٹے کو پروموٹ کرتا ہے تو وہ بھی سنی جاتی ہے, پوری دنیا میں ہر ایک ملک کی سنی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ ڈسائڈ لوگوں نے کرنا ہے, سننے والوں نے, کہ یہ کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے, یہ سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. ابھی آپ کے پاس ماجد بھائی کے پاس یہ پاور ہے کہ یہ جس کی بھی دل کرتا ہے کال کاٹ دیں, جس کی دل کرتا ہے کال, یہ پاور ہے نا. لیکن اگر ایسا, یہ ملکوں کا بھی ایسا ہے کہ عمران خان کے پاس پاور ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری آواز یا ماجد بھائی کو کہیں کہ بھائی عمران کی تعریف کرتے رہے تو کال لمبی ہو جائے گی, اگر کوئی اور کرے گا کسی اور پارٹی کے خلاف کوئی بات کوئی حق میں کرے گا تو یہ خود بول پڑیں گے کہ بھائی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے. ایسے ہونا چاہیے, سنے بات آرام سے سنے, کوئی بھی کہتا ہے اس کے اپنے اپنے ویو ہیں, کوئی بھی دیتا ہے, لیکن انصاف اللہ تعالیٰ خیر کرے پاکستان کی. انصاف جب جس دن سب ہو گیا نا, یہ سب جج آپ کے عمرے بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں, آگے دیکھ لو آپ نے قبروں میں کہا ہے کہ قاتل پانچ قتل کی اس کو سزائے موت دی یا کچھ بھی اس کو معاف کر دیا, اس کا کیس ہی ختم کر دیا, کوئی ڈرگز ہوتی ہے اس کا کر دیا. جس دن اگر یہ ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا, سب محکمے کو فوج بھی لے لے جتنے بھی محکمے پاکستان میں ہیں, اگر ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو تو انصاف آ جائے گا نا جب, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی, پاکستان کی دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی, ساری اکانمی بھی ٹھیک ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. صرف دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا کوئی نیک آدمی کوئی آ جائے, جو کہ ہر آدمی, کوئی ضروری یہ نہیں کہ عمران خان اچھا ہے تو ساری دنیا اچھی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کرے سب کے دلوں میں خوف, خوف خدا مرنا ہے, اگر مرنا ان کو یاد آ جائے تو یہ انصاف کریں اور کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں. جو قاتل ہے اس کو سزا ہونی چاہیے, جو چور ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. میری کوئی پالٹی نہیں ہے, ہم تو ادھر ہی کام کریں گے, مزدوری کریں گے تو کرتے رہنا جتنی دیر زندگی ہے, لیکن یہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی, ابھی ٹرین کے حادثے ہوئے ہیں, شیخ رشید میں اس کی برائی نہیں کرتا, جتنے بلا بلا کرتے ہیں, میں نے ٹرینیں چلا دی, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, بھائی خدا کے لیے نظام کو صحیح کریں. بس میرا بھی یہی میسج ہے, تھینک یو سو مچ ٹائم دینے
کا, شکریہ.
تھینک یو ویری مچ. اگر جعفری صاحب ایک بات میں آپ کو, آپ بالکل بجا ہیں, جب بھی کبھی کچھ ایسا بات ہوتی ہے تو انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا فون نہیں لے رہا ہوئے گا, مگر اگر آپ کی کال کو کاٹا جاتا ہوتا تو آج بھی کاٹا جا سکتا تھا, اگر آپ کی کال نہ لینی ہوتی تو آج بھی نہ لی جاتی, مگر اگر آپ کو میری الفاظ پہ یقین ہے تو کبھی کسی کال کو کاٹا نہیں جاتا. یس آئی ایم ہیئر ٹو ڈیفینڈ مائی کنٹری. غلطیاں ہیں میرے میں, آپ کو کیا پتا, میرا آپ کے بھی بچے میرے بھی بچے, ہماری بھی جوانی تھی, ہم بھی اچھے ہوتے تھے, بڈھے ہو گئے اب کسی نہ کام کے, تو اب بچے یہ تو نہیں کہتے کہ یہ میری ماں نہیں ہے, یہ کام کرنے والی ہے, یہ تو نہیں کہتے. ہم اپنے گھر کو اپنے وطن کو نہیں بھول سکتے. अगर हमारे बड़े जो हैं या अगर कोई कमी कोताही है तो ये मकसद तो नहीं कि हम उसको डिसोन कर देते हैं. आपकी ना तो कॉल्ड, सॉरी मैं आई वॉज डिवाइडेड, मेरी मेरा ख्याल तीन चार बातें मिक्स हो गई हैं. नंबर वन, यस वी डिफेंड आवर कंट्री, प्रॉब्लम्स हैं बट वी हैव टू चेक आवर सेल्फ फर्स्ट रादर देन चेकिंग अदर्स. मैं तो आज तक आपको इतना ना यकीन दिला सकी कि वी डू नॉट डिसकनेक्ट कॉल्स. मैं आपको इतना ना यकीन दिला सकी कि वी डू नॉट पिक एंड चूज कॉल्स. वी स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम वन लाइन एंड वी कीप ऑन टेकिंग टिल द लास्ट लाइन. उतनी देर में पहले वाली लाइन वाला इंतजार कर रहा होता है, छड़ो परे जी, क्रिकेट वाला आओ छड़ो परे सारी. ए पॉलिटिक्स जड़ी है ना, रिलीजन और पॉलिटिक्स अग गई, क्यामत आने वाली, अल्लाह करे. मैं तो कहनी है कल ध्यान दी आज जावे, आमीन सुमा आमीन. डॉक्टर नान यार, वो पार्लियामेंटेरियन मैच में पाकिस्तान जीत गया, वो सुने की होया? डॉक्टर अदनान मैच पॉइंट के डॉक्टर अदनान हमारे साथ हैं एवरीडे 9 to 10. आज क्या करेंगे, 6:30 बजे तो आप यहाँ बैठे हुए हैं. कल माशाल्लाह आपकी व्यूअरशिप वाज ट्रेमेंडियस एंड देर आर सो मेनी पीपल विद यू एंड इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव प्रोग्राम एवरीडे 9 to 10. डॉक्टर अदनान विद जिशान एंड विद आमिर एंड अलोंग विद ट्रेमेंडियस नंबर ऑफ लिसनर्स, यू कैन वॉच दिस प्रोग्राम ऑन आवर वेबसाइट www.evaz.com, आर ऐप ये वाज ऑफिशियल आईपी बॉक्सेस पे. इस दौरान आप फोन करके कॉल करके अपने कमेंट्स दे सकते हैं. डॉक्टर दान इज हियर इन द स्टूडियो. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम.
जी वेलकम साहब. अरफा पा कैसी हैं आप? माजिद भाई आप कैसे हैं सुनाइए.
अल्हम्दुलिल्लाह
आपकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, बहुत अफसोस है मुझे. ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो भी बाहर हो गई, दूसरी कोई भी टीम नहीं बची. लेकिन एनीवेज अरफा पा ने बताया कि 1.6K 2K, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
कि आप आगे जाएं.
जी जी
डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बता दूं, कल मैंने रेडियो पे कहा था ये.
जी जी
ये लोग तो चैंपियन बनते हैं ना, के इस टूर्नामेंट के चैंपियन कौन है, ठीक है ना. हम चैंपियन के चैंपियन हैं.
वो हमने उन दोनों सेमीफाइनल्स को हराया हुआ.
थैंक यू. जो कल फाइनल होगा या जो संडे को जो फाइनल होगा, तो उस संडे के फाइनल में जो भी दोनों टीमों में से जो भी जीत जाए, चाहे न्यूजीलैंड जीते चाहे इंग्लैंड जीते, उन दोनों टीमों को हमने हराया तो हम तो चैंपियन के चैंपियन है ना.
उन दोनों टीमों को पाकिस्तान ने हराया जो चैंपियंस हैं, जो फाइनलिस्ट हैं, दोनों को पाकिस्तान डिफीटेड. और पाकिस्तान खुद उस टीम से हारा जो चैंपियनशिप के अंदर किसी और टीम से नहीं हार सकी, वेस्ट इंडीज.
राइट.
तो ये दिस इज शोइंग द टैग ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी. वो टीम जो किसी को ना हरा सकी वो पाकिस्तान उससे हार गया.
हाँ.
और जो टॉप ऑफ द लाइन टीमें हैं उन दोनों को जो है पाकिस्तान ने शिकस्त.
हम लोग क्या करते हैं कि हमको सिर्फ जागने के लिए चाहिए होता है थोड़ा सा कि भाई हम कैसे जागेंगे. अब एक थर्ड क्लास टीम से आप हार जाएंगे वो थर्ड क्लास टीम भी, मतलब दे हैव वॉन ये आईसीसी का चैंपियनशिप जो है दो दफा जीत चुकी है वो वनडे क्रिकेट. तो अगर उससे हम हार गए तो वो दैट वाज अ वेक अप कॉल फॉर अस.
बिल्कुल. और दूसरी बात ये कि मैंने नोट किया कि इस वर्ल्ड कप के अंदर के आपकी जो वेकअप कॉल है, जिस तरह माजिद भाई आपने कहा, तो अगर पाकिस्तान को जगाना था ना, तो मैं ये समझता हूँ कि अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच पहला करा दिया करें, ताकि वो 92 में भी ऐसे हुआ था, #92 में ऐसे हुआ था और अभी भी ऐसे हुआ है, तो उनको पहले जगा दिया करें. तो बहरहाल इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट. पाकिस्तान की टीम बड़े रिदम में आ गई थी, यकीन करें ये रन रेट का थोड़ा सा डिफरेंस, ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ 150 रन भी बना लेते ना, 170 रन भी बना लेते तो वी वर इन इंदा. और यकीन कीजिए पाकिस्तान वुड हैव टेकन दिस चैंपियनशिप. पाकिस्तान जिस रिदम में आ गया था वो बहुत डेंजरस रिदम था, लेकिन इट वाज सो अनफॉर्चुनेट.
बैटिंग एंड बॉलिंग बोथ पूरे फुल रिदम में थी.
इट वाज टू मच अनफॉर्चुनेट. जो पाकिस्तान ने लूज किया है ये लूज करने वाला मैच नहीं था. लेकिन देखें अब इंग्लैंड की टीम 1979 का पोटेंशियल कप और उसके बाद 1987 का ग्रैंड फिनाले जब ये ऑस्ट्रेलिया से हारे और उसके बाद 1992 जहां ये पाकिस्तान से हारे, तो बहुत बड़ी बात है. आपको पता होगा कि इस पूरे वर्ल्ड कप में अंदर एक हैशटैग चल रहा था ट्विटर के अंदर और इंस्टाग्राम पे, #92 में भी ऐसे हुआ था. तो वो तो सारी बातें गलत हो गई, लेकिन एक बात सच हो गई, 92 में भी ऐसे हुआ था कि इंग्लैंड फिर फाइनल में पहुंच गया. 27 साल के बाद इंग्लैंड जो है वो फाइनल में पहुंच गया और 27 साल के बाद वो मौजा हुआ कि इंग्लैंड की टीम ने इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों को शिकस्त दे दी। पिछले 27 साल से इंग्लैंड की टीम जो है वो न्यूजीलैंड इंडिया को शिकस्त नहीं दे सकी थी।
Exactly.
और यही कारण था पाकिस्तान के बाहर होने का, चाहे इंडिया खुद हारा या नहीं हारा, बड़ी बहुत लंबी डिबेट है इसके ऊपर भी। वो तो फिर धोनी जो है वो सेमीफाइनल में भी ना खेल पाए, पता नहीं वो कैसे शिकस्त के साए उनके ऊपर मंडलाने लगे। लेकिन एनी हाउ इट वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर द भारत, जहां पर 1.3 बिलियन लोग जो है इसको एज अ रिलीजन लेते हैं, तो वहां पर उनके साथ भी काफी बुरा हुआ। और पाकिस्तान के फैंस भी डिजेक्टेड फैंस, अबाउट 2-3 बिलियन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये साउथ एशिया की पॉपुलेशन है जिसने सफर हुई। लेकिन दोबारा वही बात है कि गेम को ऐसा गेम लेना चाहिए, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, एक को जीतना है एक को हारना है। कौन सोच सकता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। आपको माजिद भाई, आपके लिसनर्स को पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम कि ऑस्ट्रेलिया की जो चैंपियन टीम है, एक रिकॉर्ड है उनके पास, 8 सेमीफाइनल्स दे हैव प्लेड सो फार एंड दे नेवर लॉस्ट द नॉकआउट गेम ऑफ द सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया 1975 से लेके अब तक कोई भी नॉकआउट गेम नहीं हारा था, और जब कल ये मैदान में गया तो हमें यकीन था कि ये नॉकआउट भी ले जाएंगे। आज तक ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट गेम हारने का रिवाज नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब एरन फिंच ऑस्ट्रेलियन टीम दे लॉस्ट द नॉकआउट गेम अहेड ऑफ देयर आर्च राइवल्स ब्लैक कैप्स, क्योंकि इनका रग्बी के मैचेस होते हैं तो काफी इनके अंदर रवेली पाई जाती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की है। तो दैट वॉज द आई से द बेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए, जिस तरह इंग्लैंड ने काबू किया जेज ने। मैंने शुरू से यह कहा करता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, मुझे ये पूछते थे जिशान और आमिर कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, तो कहते हैं आपने गूगली नहीं करानी, तो आप भी मुझसे पूछा करते थे। लेकिन यकीन कीजिए मेरे लिए ये पिक करना इतना मुश्किल था, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड, कभी नॉकआउट गेम नहीं हारे, लेकिन मैंने इनसे एक ही बात की थी, मुझे जो खतरा है वो जे, इंग्लैंड के जो जे हैं वो इतने खतरनाक हैं, जोनी बेयरस्टो, जेसन रॉय, जो रूट, दे आर इन ट्रेमेंडस फॉर्म। और वही हुआ जिसका डर था कल, जो जोनी बेयरस्टो
अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों चल सके,
पाकिस्तान के खिलाफ भी चले, आप अगर जोस बटलर को देखें, वन ऑफ द जेस जोस बटलर, वो तो आपने कैच बड़ा अच्छा पकड़ लिया, वरना जोस बटलर आपसे गेम ले गए
थे,
लेकिन इट वॉज अ ह्यूज टारगेट 300 प्लस। लेकिन ये देखिए ना कि उनकी चेस कितना अच्छा जा रहा था, पाकिस्तान को एक टाइम पे खतरा पड़ गया था, लेकिन हर मैच में आप नहीं चलते, लेकिन उसके बावजूद जोस बटलर की इनिंग्स दैट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। अगर आप रीप्ले में देखें अभी दोबारा रीटेलीकास्ट में वो मैच, तो ही प्लेड ट्रेमेंडसली। तो कल दोबारा जोनी बेयरस्टो और जेसन रॉय, उन्होंने 100 प्लस पार्टनरशिप, ये वर्ल्ड कप के अंदर एक और जेसन रॉय जो है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेलते हैं आपकी पीएसएल से, तो कल जो रिकॉर्ड बना ये चौथी बड़ी पार्टनरशिप थी। इन्होंने अब केएल राहुल और रोहित शर्मा का जो 3 पार्टनरशिप का 100 प्लस का रिकॉर्ड था इस वर्ल्ड कप में, वो भी ब्रेक कर दिया है। अब ये 4 सच पार्टनरशिप हो गई है 100 प्लस की, दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द गेम्स ऑफ वर्ल्ड कप। जो 3 मैचों का रिकॉर्ड है वो सौरभ गांगुली और सचिन रमेश डोलकर के पास भी था 1996 के वर्ल्ड कप में, और उसके बाद 2003 के वर्ल्ड कप में, लेकिन वो रिकॉर्ड भी शटर हो गया है। तो अब ये जोनी बेयरस्टो और जेसन रॉय, ये अब वर्ल्ड क्लास पार्टनरशिप बनी है, ओपनिंग पार्टनरशिप जहां 100 प्लस 4 दफा हुआ है एंड दे हैव वन मोर गेम। और जहां बहुत ज्यादा चीजें हुई वहां पर एक और रिकॉर्ड टूटने से बच गया, बड़े खुश होंगे, सचिन तेंदुलकर का जो मोस्ट रन गेटर है ओवरऑल, तो रोहित शर्मा ने उनका सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, शटर कर दिया 5 सेंचुरीज के साथ। लेकिन जो ओवरऑल रिकॉर्ड है 648 का, उसमें अभी भी अब रोहित शर्मा उस दौड़ से बाहर हो गए और डेविड वार्नर उस दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन अभी 2 खिलाड़ी बाकी हैं उसमें, आपके कल के मैच के अंदर आपके न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, ही इज एट द 548। देखते हैं कि क्या वो 122 रन्स मजीद बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। अगर वो 122 रन्स बनाते हैं तो सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड कप ऑल टाइम बेस्ट रन एग्रीगेट का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। दिस विल बी ट्रेमेंडस टू सी। तो स्टिल इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन के केन विलियमसन क्या करने जा रही है, लेकिन यकीन करें ब्रिलियंट कैप्टेंसी केन विलियमसन,
ब्रिलियंट जो है वो भी आजकल बहुत फॉर्म में है।
केन विलियमसन बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, और आपको मैं ये बताता चलूँ, अगर मुझे वो क्लिप मिल जाए मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड की टीम जो है अब 27 साल के बाद जो पहुंची, तो मैंने यही कहा था कि अब दोनों टीमें जो है वी आर गोइंग टू सी अ न्यू चैंपियन। अब नया चैंपियन देखने जा रहे हैं आप, दोनों के साथ बड़ी ज्यादती हो जाएगी, हार्ड लक होगी। और न्यूजीलैंड की टीम जो है, आपको मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम नॉकआउट गेम्स नहीं हारती, ऑस्ट्रेलिया इज द टीम जो 8 सेमीफाइनल खेली है, ये एक रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप का 1975 से लेकर 2019 तक। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के ये जो रिकॉर्ड है ये जॉइंट को होल्डर है, वो भी 8 सेमीफाइनल खेली है। सिर्फ फर्क क्या है कि वो सेमीफाइनल हारती थी और ऑस्ट्रेलिया जीतता था। और न्यूजीलैंड की टीम ने भी 8 सेमीफाइनल खेले हैं, इन्होंने भी 8 खेले हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम 6 सेमीफाइनल हारी थी, सिर्फ 2 सेमीफाइनल वो जीती 2015 में और 2019 में। पूछें क्यों, उसका जवाब ये है क्योंकि पाकिस्तान 2015 और 19 में नहीं था सेमीफाइनल में, वो जब जब सेमीफाइनल में पहुंचते तब तब पाकिस्तान उनको हरा देता, पीछे से पहुंचता, 83 हो, 1992 हो, 96 हो, जहां न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचा पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। तो मैंने ये पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि अब चूंकि सेमीफाइनल में पाकिस्तान नहीं है तो न्यूजीलैंड इज हैविंग अ ब्राइट चांस टू विन द सेमीफाइनल, और वही हुआ, केन विलियमसन ने भारत को मात दी, अब वो फाइनल में है। अब देखना ये है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो रिकॉर्ड है उनके पास मोस्ट फाइनल्स का, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा फाइनल्स खेलने का एजाज टीम ऑस्ट्रेलिया के पास है, 7 ग्रैंड फिनाले खेले हैं जो बहुत बड़ी बात है, 7 ग्रैंड फिनाले में से 5 जो है वो सक्सेस स्टोरीज हैं, 2 दफा ये हारे, एक दफा 1975 में क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज ने उनको शिकस्त दी, और 1996 में जब मैं आई विटनेस था लाहौर के मैच के अंदर राणा डुंगा ने जब शिकस्त दी ग्लेन मैकग्रा और शेन वॉर्न की टीम को, तो ये 2 ही मौके थे जब ऑस्ट्रेलिया फाइनल हारा था, ओवरऑल 7 टाइम्स दे रीच द ग्रैंड फिनाले, और टीम ऑस्ट्रेलिया के पास कोई दूसरी टीम है जो फाइनल्स की चैंपियन है पहुंचने की तो वो इंग्लिस्तान की टीम है, 4 दफा इनको फाइनल खेलने का एजाज हासिल हुआ है, ये टॉप टीम है इस वक्त, इनसे और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा फाइनल जो है वो किसी टीम ने नहीं खेले। अब अगर इंग्लैंड ये मैच हारता है तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब है कि 4 अटेम्प्ट्स के अंदर इंग्लैंड ये फाइनल नहीं उठा सकता, और अगर न्यूजीलैंड ये मैच हारता है तो
हालांकि न्यूजीलैंड को डॉक्टर साहब किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, ओके नोबडी, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल पिक्ड इंग्लैंड, मगर वो भी होम एडवांटेज की वजह से, मगर न्यूजीलैंड को किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, इन लोगों ने इंडिया को पिक किया था, लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को पिक किया था, पाकिस्तान को भी किसी ने पिक नहीं किया था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया, इन तीनों टीमों को सबने पिक किया था कि इसमें से 2 टीमें जो हैं फाइनल में आएंगी, इंग्लैंड आ गई, मगर आप कहते हैं कि इंग्लैंड कभी तो जीता ही नहीं है ये, और होम एडवांटेज है, मगर किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि न्यूजीलैंड यहाँ आएगी। अब आपकी क्या राय है?
न्यूजीलैंड जो है मुझे लगता है कि एज अ डार्क हॉर्स, अब मुझे ये नहीं मालूम, वो तो खुदा जानता है कि कल क्या होगा, लेकिन मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि अगर न्यूजीलैंड की टीम जो इंडिया को मैच हराएगा वही वर्ल्ड कप का फाइनल लेके जाएगा, न्यूजीलैंड को मैं अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करूंगा, ऑल दो कि मेरा दिल दिमाग ये कहता है कि इंग्लैंड का वर्ल्ड कप है, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि न्यूजीलैंड की टीम अपसेट करने की सलाहियत रखती है और डार्क हॉर्स है जस्ट लाइक पाकिस्तान। इफ यू सी 1992 पाकिस्तान, पाकिस्तान 4th टीम थी और सबसे कमजोर टीम थी उस वर्ल्ड कप की,
रेन डिलेड
मैच,
एक पॉइंट
एडिलेड ओवल में 73 रन पे पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी, और उसके बाद 30 रन पे एक खिलाड़ी आउट था और इयान बॉथम क्रीज के ऊपर खड़े हुए थे तो बारिश शुरू हो गई और इमरान खान अपनी टीम को लेकर पवेलियन चले गए और इयान बॉथम की तरफ देखा तो वो तेज बारिश के अंदर भी खड़े हुए थे और बड़े फ्रस्ट्रेट थे और उन्होंने ऊपर देख के इस तरह इशारा किया कि व्हाट कैन आई डू, ही वाज नॉट विलिंग टू लीव द पिच, लेकिन उसके बाद उनको ग्राउंड पर इशारा किया कि प्लीज आप चले जाइए, इस वक्त बहुत तेज बारिश हो चुकी है, और वो मेरे अल्लाह ने ऐसा करम किया कि उस सारी रात शाम बारिश वहां ना रुकी और पाकिस्तान को वो एक पॉइंट जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचा गया। और आपको याद होगा कि जब सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचा तो मुईन खान ने जो छक्के लगाए थे और मुईन खान के विनिंग सिक्स से आप जीते थे तो आखिरी ओवर जब चल रहा था तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, तो जब बारिश शुरू हो गई थी उसके बाद पाकिस्तानी फैंस काफी मायूस थे कि यह बारिश शदीद ना हो जाए, लेकिन आम ख्याल यही था क्योंकि रन बहुत थोड़े रह गए हैं, बॉल्स भी थोड़ी, तो इस मैच को पूरा होना चाहिए, वरना वो मैच न्यूजीलैंड के हक में जा सकता था क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड जो है वो स्लो था, लेकिन मुईन खान ने छक्का लगा के उस मैच को तकरीबन एक ओवर और 3 बॉल्स पहले खत्म कर दिया था। और आपको ये मालूम है, शायद बहुत से हमारे लिसनर्स को मालूम ना हो कि जो ही वो छक्का लगा बारिश उसके बाद तेज शुरू हो गई और वो जो बारिश ऑकलैंड में हुई उस सेमीफाइनल में वो 1.5 हफ्ता जारी रही, 1.5 हफ्ता वहां पर बारिश नहीं रुकी, लेकिन पाकिस्तान जो है अपना सफर मुकम्मल करके मेलबर्न पहुंच गया जहां पर कोई बारिश नहीं थी और इंग्लैंड टीम उनका इंतजार कर रही थी 1992 में।
डॉक्टर साहब, आई विश आई कैन कीप ऑन टॉकिंग टू यू अबाउट सच अ इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हेनेवर आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एंड इन पर्टिकुलर वी टॉक अबाउट क्रिकेट और ये आईसीसी की वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। और तो अभी दोनों टीमों में से इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड दे आर इन फाइनल्स, आंख बंद करें और एक क्रिकेट का नाम ले, नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिकल आंसर,
न्यूजीलैंड इज अ डार्क हॉर्स
अगेन नो पोलिटिकल आंसर पिक वन टीम
इंग्लैंड अगर अभी वर्ल्ड कप नहीं जीतता अगले 100 साल में वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा इससे बेहतर चांस जो है गॉड हैज नॉट गिवन देम द अपॉर्चुनिटी इन द होम ऑफ क्रिकेट इनको एक चांस मिला था 1975 में प्रोडेंशियल कप उठाने का जो उस वक्त वर्ल्ड कप का नाम प्रोडेंशियल कप हुआ करता था एंड दे मिस द अपॉर्चुनिटी वाया द कर्टसी ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ विव रिचर्ड्स एंड क्लाइव लॉयड अब इनको खुदा ने दूसरा मौका दिया है कि होम ऑफ क्रिकेट में अपने घर में लॉर्ड्स में तो मुझे लगता है कि होम एडवांटेज की वजह से 60% इंग्लैंड के चांसेज हैं 40% कीवीज के लेकिन जो दिल मेरा कहता है गट फीलिंग कप्तान दिखिए इनका केन विलियमसन कैप्टन कूल और जिस टेम्परामेंट से वो खेलते हैं ही इज अ गेम चेंजर एट द गिवन डे अगर कोई टीम इंग्लैंड को पाकिस्तान के बाद शिकस्त दे सकती है लॉर्ड्स में तो वो है टीम न्यूजीलैंड सो इट मींस द चांसेस आर स्टिल देयर ऑल्दो के 60% चांसेस विद द इंग्लैंड 40% विद द न्यूजीलैंड लेकिन अगर कोई टीम लॉर्ड्स में इनको शिकस्त दे सकती है तो वो न्यूजीलैंड की टीम है
So you pick England and I pick New Zealand.
No, New Zealand is my team. But आपको मैंने
कहा था डॉक्टर साहब हमेशा हम करते हैं political answer ना दिया
मैंने आपको बताया जो ground reality है ground reality England की है लेकिन न्यूजीलैंड इज द टीम विच इज हैविंग अ रियल चांस टू पिक दिस वर्ल्ड कप जो सेंटिमेंटल सेमीफाइनल उन्होंने भारत की टीम को शिकस्त दी और वो जो गोल्डन थ्रो थी जो माही को पड़ी महेंद्र सिंह धोनी को देखिए मेरे खुदा ने दुनिया के अंदर कोई भी चीज हकीर या कमतर नहीं बनाई हर चीज का कोई मकसद रखा है हर मखलूक को अता करने से पहले मार्टिन गुप्टिल मुझे नहीं समझ लग रही थी कि उनको सिलेक्टर्स इस वर्ल्ड कप में क्यों लेके गए हैं मार्टिन गप्टिल जो 548 के साथ द मोस्ट रन गेटर्स थे न्यूजीलैंड की तरफ से पिछले वर्ल्ड कप के इस वर्ल्ड कप में ही वाज अ टोटल फ्लॉप उन्होंने एक भी मैच में न्यूजीलैंड को कॉलर मुनरो के साथ कोई स्टार्ट नहीं दिया लेकिन मार्टिन गुप्टिल का जो एक थ्रो है वो मैंने सुना था ना मैं कहा करता हूं 1999 में सन यू डिडंट ड्रॉप द कैच यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप सन यू डिडंट हिट द विकेट्स यू हिट द वर्ल्ड कप वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव थ्रो ऑफ द 1975 वर्ल्ड कप
अंटिल 2019 देयर वाज नो टू वेज अबाउट इट जो उनके आया है सीधा एम लेके जो उन्होंने मारा है
बुल्सआई
एंड वो भी मेरा ख्याल है वो जो है धोनी को भी वो रात भर सताता होगा
धोनी को रात भर नहीं धोनी को ये पूरी जिंदगी उनके लाइफ टाइम ये हॉन्ट करेगा जैसा कि 1987 के वर्ल्ड कप के फाइनल में माइक गेटिंग ने जो स्वीप की थी रिवर्स स्वीप उनको वो पूरी जिंदगी हॉन्ट करती रही वो रिवर्स स्वीप जिसपे इंग्लिस्तान जो है वो फाइनल हार गया था ऑस्ट्रेलिया से कलकत्ता में 1.5 लाख मजमे के सामने तो इनको ये पूरी जिंदगी ये रन आउट हॉन्ट करता रहेगा कि उन्होंने सेकंड रन को लिया और दूसरी बात ये अगर ले लिया था तो इन्होंने डाइव क्यों नहीं की Why didn't he dive? If Dhoni would have dived, he would have survived India. और आपको ये भी पता होगा कि win probability when Mahendra Singh Dhoni is not out, India match जीत जाता है. India, भारत, Mahendra Singh Dhoni जब क्रीज पे हो और not out हो और भारत मैच हार जाए, ऐसा क्रिकेट की तारीख में सिर्फ दो मरतबा हुआ है. एक जब 2013 में भारत में चैंपियंस की चैंपियंस टीम पाकिस्तान जब गई थी, तो वहाँ पर भारत में पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी भारत को. महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट थे लेकिन जुनेद खान की बॉलिंग के आगे बेबस थे एक वो लम्हा था और दूसरा लम्हा जो लास्ट मैच इंग्लैंड से हारा भारत जहां पर धोनी वाज सस्पेक्टेड टू बी एलिजेडली इन्वॉल्व मैं नहीं कह रहा अखबारात कह रहे हैं उनके अपने लोग कह रहे हैं सौरव गंगुली कह रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी को तेज खेलना चाहिए था आखिरी मैच भारत जान के हार गया या नहीं हारा जो भी हुआ इस हम बैच में नहीं जाना चाहते लेकिन वो मैच एक जो भारत हारा और एक जो 2013 का इसके अलावा उनके पूरे करियर में कोई भी ऐसा मैच नहीं है जहां पर महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट हो और भारत मैच ना जीता हो तो इट मींस व्हेन धोनी इज ऑन द क्रीज नॉट आउट
व्हाट डू यू थिंक हिज फ्यूचर इज
मुझे लगता है कि धोनी का फ्यूचर अब खत्म हो चुका है शेब मलिक की तरह लेकिन चूंकि उनको इतना ट्रेजिक एंड था और इतनी फ्रस्ट्रेट थी इंडियन टीम कि उनको बैट की वी बना के उनको स्टैंडर्ड ओवेशन नहीं दिया गया तो मुझे लगता है कि जो उनकी होम सीरीज होगी वहां पर किसी एक मैच में इनको चांस दिया जाएगा और स्टैंडिंग कैप्टन विराट कोहली जो मेरी पेशन गोई है मुझे लगता है कि इनको वो रिबन देंगे कप्तानी का आखिरी 10 ओवर्स के लिए और उनको जस्ट टू गिव माय रिस्पेक्ट और जो भी कोई टीम भारत का दौरा करेगी और इनको एक्सटेंडेड ओवेशन देके कोई एक मैच खिला के इनको फेयरवेल दिया जाएगा
अब तो यहां से मेरा ख्याल है कि उनकी नेक्स्ट ट्रिप जो है वो वेस्ट इंडीज
है, वेस्ट इंडीज है, तो मुझे लगता है कि किसी एक मैच में उनको ये दिया जाएगा फेयरवेल देने का, मुझे लगता है कि टीम
ही डिजर्व्स इट वर्ल्ड कप जितवाया है भारत को टी20 नॉट फॉर इंडिया एंड इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत कुछ किया,
तो मुझे लगता है कि इंडिया शुड रिस्पेक्ट
ही दे शुड गिव हिम ऑल द रिस्पेक्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप दिया आपको 2011 का वर्ल्ड कप दिया बेपरा पाकिस्तान को पाकिस्तान में शिकस्त थी जो भारत ने आज तक 1947 के बाद नहीं दी तो आई थिंक ही शुड हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट
he should have all the respect that he deserves and there is no two ways about it ek baat aata hai har ek ka ke wo
virat kohli bade insaan hai acche sportsman hai to mujhe lagta hai ki wo khule dil se inko chance denge
ha jaise shoaib malik hai shoaib malik ne retirement kar di to ab inko bhi retire hona chahiye magar in the meantime every sports fan should regard him as one of the best. Doctor Saab, thank you so much. I really appreciate it.
Welcome.
And aapne England ko pick kiya, maine New Zealand ko pick kiya. 60-40 आपने कहा इंग्लैंड को, मगर आपके दिल से आप कहते हैं कि न्यूजीलैंड जीतेगा. एंड आई वांट न्यूजीलैंड टू विन टू, ओके, नथिंग अगेंस्ट इंग्लैंड, मगर न्यूजीलैंड इज अ सरप्राइज टीम. एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड, वो इंग्लैंड को तो बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया है, किसी ने न्यूजीलैंड को एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मैं चाहता हूँ आई एम विद ए अंडरडॉग, तो मैं कहता हूँ कि अंडरडॉग को जीता चाहिए.
आपके लिए ये, आप जरा सेलफोन सुने डॉक्टर अदनान मैच पॉइंट, वो एक कोई करेक्शन आ रही है और डॉक्टर अदनान से बेहतर क्रिकेट के बारे में कोई भी नहीं जानता. उन्होंने कुछ बताया है कि उनसे कहे जी बता दें कि क्या कह रहे हैं ताकि आप सुन लें.
जी
आप भाई साहब, अगर तो आप स्टूडियो में कॉल कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, या आप अच्छा क्या करेक्शन क्या है वो बता दीजिए.
जी जी वेलकम सलाम जी जी शिकस्त खाई थी और 79 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को शिकस्त हुई थी क्लाइव लॉर्ड की वेस्ट इंडीज
के.
बिल्कुल
थे, उन्होंने
70
कुछ किए
जी. और जो अगला मैच था वहां पर जो अगले साल में जो है विव रिचर्ड जो थे वो मेंटर थे जो लेके गए थे वर्ल्ड कप, इनके लिए जबरदस्त कैचेस भी पकड़े गए थे बाउंड्री में, बिल्कुल हमें याद है. तो वो चूंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है जी,
75 का वर्ल्ड कप रिचर्ड ने लात मार के पड़ रहा है.
करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. बहुत जी, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्वॉल्वमेंट.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान हमारे साथ हैं और क्रिकेट को कवर कर रहे हैं. डॉक्टर साहब एक बड़ा प्यारा जोक आया, हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं साजिद मुगल उनका नाम है, माजिद भाई, मतलब मैंने कहा इस कॉम का दिमाग देखें कितना चला
जबरदस्त.
उन्होंने कहा शोएब मलिक के साले कल निकल गए.
कल अच्छा
वसीम अकरम के साले आज निकल गए और इमरान खान के साले जो है वो फाइनल खेलेंगे.
ओ डॉक्टर साहब वंडरफुल टॉकिंग टू यू, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच.
अच्छा मैं जाते जाते आखिरी बात बता दूं आपको कि अब वो फिर कॉल ना आ जाए कि मैंने दिन गलत बता दिए, क्योंकि जब हम एक्सटेम्पोरिंग कर रही होती है तो संडे न्यूज से स्लिप हो जाता है, लेकिन हमारे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे बिल्कुल 75 का वर्ल्ड कप जो था ऑस्ट्रेलिया का लूजिंग थी, वहां पर गैरी गिलमोर की बड़ी जबरदस्त वहां पर बॉलिंग भी हुई थी और बड़ा यादगार मैच थे पोटेंशियल कप के. अब जो इंग्लैंड की टीम ये वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, तो ये हमारा किलर फैक्टर था कि जब ये फाइनल में पहुंची है तो कब पहुंची है, 1992 आखिरी साल था, 27 साल जब पहले जब इंग्लैंड की टीम जो है वो फाइनल में पहुंची. इंग्लैंड की टीम उसके बाद से 1996 में फैसलाबाद में क्वार्टर फाइनल हार गए श्रीलंका से, और उसके बाद उनका डेल हमारा 1999 में वो घर के अंदर होते हुए भी आउट हो गए, 2003 में वो अच्छा नहीं खेले और लगातार एक ड्रॉबैक, इंग्लैंड की टीम जो है वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन अब जो इयान मॉर्गन की टीम थी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने दुबाना इस ग्रैंड फिनाले में पहुंचने के लिए 327 महीने लिए, 1424 हफ्ते लिए, जबकि 9,959 दिन लिए, जबकि 239,256 घंटे लिए और 14,03,55,360 मिनट लिए और 86,13,21,50 जो है वो सेकंड लिए, जबकि इंग्लैंड आर बैक इन द मेंस वर्ल्ड कप ग्रैंड फिनाले आफ्टर द 1992 #92 में भी ऐसा हुआ था
एंड दे लूज. थैंक यू सो मच. डॉक्टर साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, इज लॉट ऑफ फन एंड समय कर आप, ये हमारा फन होता है डॉक्टर साहब से, एंड ही इज गॉट नथिंग बट नॉलेज एंड अ हाफ अबाउट क्रिकेट. तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, एंड सर सुहेल भाई, आपकी फरमाइश पर बहुत देर पहले आपने फरमाइश की थी ये वतन तुम्हारा है मेडिसन की आवाज़ में, समाप्त फरमाइए. 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है.
चमन के फूलों पर रंग आब तुमसे है, इस जमीन का हर दर्रा आफताब तुमसे है, ये फजा तुम्हारी है, बैर पर तुम्हारे है, कुशल के ये जाले रह गुजर तुम्हारे, ये बदन तुम्हारा है, तुम पास बसके मिट्टी में खून शहीदों का अर्ज पाप मरकज है, कौम की उम्मीदों का नस्म जब्त को अपना मिले कारवां जाओ, वक्त की अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बस के. जमीन मुकद्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो बरगुबार की सूरत, देखना गवाना मत दौड़ते यकीनों, ये वतन अमानत है और तुम अमीर हो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बस के. मेरे कारवां हम थे
हम तो सिर्फ हुआ थे असल दास्तान नफरतों के दरवाजे उनके बंद ही रखना इस वतन के परचम को सरबलंद ही रखना ये वतन तुम्हारा तुम पास से ये चमन तुम्हारा तुम नगमा से